डैनियल की पुस्तक क्रमांक 18।
वो घड़ी प्रेरणा स्पष्ट करती है कि दानियल का तीसरा अध्याय संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है। यशाया के 23वें अध्याय में सोर की वो वेश्या जो पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करती है, वही प्रकाशित वाक्य में वर्णित वेश्या है जो पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में उस वेश्या के ललाट पर महान बाबुल लिखा हुआ है।
और वो स्त्री बैंगनी और किरमिजी रंग में सजी थी और सोने बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से अलंकृत थी। उसके हाथ में सुईने का प्याला था जो घृणित बातों और उसके व्यभिचार की अशुद्धाओं से भरा था, और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, रहस्य महान बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित बातों की माता। प्रकाशित वाक्य 1754।
1950 से पहले अंग्रेजी शब्दकोशों ने इन दो पदों में दर्शाई गई स्त्री की सही पहचान रोमन कैथोलिक कलीसिया के रूप में की थी। कैथोलिक उत्पीड़नों के उस अंधकार युग के बाद जो 538 से 1780 तक चला, समूची दुनिया जानती थी कि रोमन कलीसिया वही वेश्या है जो पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करती है। स्वतंत्रता की घोषणा को कैथोलिकवाद के शासन और उन सांसारिक बाजाओं के शासन के अस्वीकार के रूप में तैयार किया गया था जिन्होंने उस वेश्या के साथ अपवित्र संबंध बनाए थे। यशाया अध्याय 23 बताता है कि वो वेश्या भुला दी जाएगी। आप किसी भी आधुनिक खोज इंजन में प्रकाशित वाक्य 17 की वेश्या की परिभाषा को कैथोलिक कलीसिया के रूप में कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भुला दी जाएगी।
और उस दिन ऐसा होगा कि आरास को 70 वर्ष तक एक राजा के दिनों के अनुसार भुला दिया जाएगा, और 70 वर्षों के अंत पर सोर वेश्या के समान गीत गाएगी, वीणा ले नगर में घूम, हे भूली हुई वेश्या, मधुर राग छेड़, बहुत से गीत गा ताकि तुझे याद किया जाए। और 70 वर्षों के अंत के बाद ऐसा होगा कि प्रभु सोर की सुधि लेगा और वो अपनी कमाई की ओर लौटेगी और पृथ्वी के मुख पर जगत के सब राज्यों के साथ व्यभिचार करेगी, और उसका व्यापार और उसकी कमाई प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगी। वो न तो संचित की जाएगी और न भंडार में रखी जाएगी, क्योंकि उसका व्यापार प्रभु के सम्मुख रहने वालों के लिए होगा ताकि वे पर्याप्त खाएं और टिकाऊ वस्त्र पहने। यशायाह 23:15-18।
परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता, और 70,000 नन विसो व व्यभिचारिणी भुला दी गई है, परंतु अंतिम दिनों में उसे स्मरण किया जाएगा। जब परमेश्वर के 7वें दिन के सप पर आक्रमण होता है, तब वह व्यभिचारिणी स्मरण की जाती है, और 7वें दिन का सप्त 10 आज्ञाओं में से वही एक आज्ञा है जिसे सदैव स्मरण रखने के लिए कहा गया था। जब वह अपनी वीणा उठाती है, नगर का भ्रमण करती है और मधुर धुने तथा अनेक गीत रचती है, तब भी उसे स्मरण किया जाता है। वह अपने गीत 70 वर्षों के अंत में गाती है जो एक राजा के दिन है। दानियल अध्याय 2 के अनुसार राजा एक राज्य है,
और जहां कहीं मनुष्यों के पुत्र बसते हैं, मैदान के पशु और आकाश के पक्षी उसने तेरे हाथ में सौंप दिए हैं, और उन सब पर तुझे शासक ठहराया है। तू ही वो सोने का सिर है। दानियल 2:28।
सिर या राजा दोनों ही राज्य के प्रतीक हैं। एक राजा के दिन द्वारा दर्शाया गया राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1798 में जब बाबुल की वेश्या को घातक घाव दिया गया, तब पृथ्वी का पशु के रूप में अपने भविष्य सूचक शासन की शुरुआत की। ये बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार 6ठे राज्य के रूप में रविवार के कानून तक बना रहता है। बाइबल की भविष्यवाणी का वो वास्तविक राज्य जिसने 70 वर्ष तक शासन किया, बाबुल था।
देखो, मैं उत्तर के सब कुलों को, यहोवा की ये वाणी है, और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को भेजकर बुलाऊंगा, और उन्हें इस देश के विरुद्ध, उसके निवासियों के विरुद्ध और चारों ओर की सब जातियों के विरुद्ध ले आऊंगा, और उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर दूंगा, और उन्हें आश्चर्य, सीटी बजाने का कारण और सदा की उजाड़ बना दूंगा। फिर मैं उनसे हर्ष का स्वर और आनंद का स्वर, दूल्हे का स्वर और दुल्हन का स्वर, चक्की की ध्वनि और दीपक का प्रकाश छीन लूंगा, और ये सारा देश उजाड़ और आश्चर्य का विषय हो जाएगा, और ये जातियां बाबुल के राजा की सेवा 70 वर्ष तक करेंगी, और जब 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति को उनके निश्र के कारण दंड दूंगा। यहोवा की ये वाणी है। और कसदियों के देश को दंड दूंगा और उसे सदा की उजाड़ बना दूंगा। यिर्मयाह 25:9-12।
वास्तविक बाबुल ने 70 वर्षों तक शासन किया, जो अंतिम दिनों के उस राज्य का प्रतीक है जो 70 प्रतीकात्मक वर्षों तक राज्य करेगा। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर 3 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण यहोयाकीम के विरुद्ध था और उसी समय यिर्मयाह की भविष्यवाणी के 70 वर्ष आरंभ हुए। ये बेलशस्सर की मृत्यु पर समाप्त हुआ जब परमेश्वर ने बाबुल के राजा को दंडित किया, जैसे उसने 70 वर्षों की शुरुआत में राजा यहोयाकीम को दंडित किया था। भविष्यवाणी में जिसे 70 वर्ष कहती है, उनके दिनों में बाबुल था, और बाइबल की भविष्यवाणी का वह राज्य जो उस समय 70 प्रतीकात्मक वर्षों तक राज्य करता है जब सूर की वेश्या बुला दी जाती है, प्रकाशित वाक्य 13 का, पृथ्वी से निकलने वाला पशु खरे का, 198 में बाइबल की भविष्यवाणी के 5वें से 6ठे राज्य में जो संक्रमण हुआ वह उस सत्य का एक भाग है जिसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में दर्शा रहा है।
और मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था और मैंने देखा कि समुद्र में से एक पशु ऊपर आता है जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके सिरों पर निंदा का नाम था। और मैंने पृथ्वी में से ऊपर आता हुआ एक और पशु देखा, उसके 2 सींग मेमने के समान थे और वो अजगर के समान बोलता था। प्रकाशित वाक्य 13:1-11।
प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में जिस समुद्र तट पर यूहन्ना खड़ा था वो 1798 का प्रतिनिधित्व करता है।
जब पोप की सत्ता की शक्ति छीन ली गई और वो उत्पीड़न करना छोड़ने के लिए विवश हो गई, तब जॉन ने देखा कि एक नई शक्ति उभर रही थी जो ड्रैगन की आवाज की प्रतिध्वनि करने और उसी क्रूरवर धर्मनिंदक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उभर रही थी। ये शक्ति जो कलीसिया और परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करने वाली अंतिम शक्ति है, मेमने जैसे सींगों वाले एक पशु द्वारा दर्शाई गई है। इससे पहले के पशु समुद्र से उठे थे, परंतु ये पृथ्वी से निकला, उस राष्ट्र के शांतिपूर्ण उदय का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसका ये प्रतीक था, संयुक्त राज्य अमेरिका। साइंस ऑफ द टाइम्स, 8 फरवरी 1910।
समुद्र से निकला पशु पृथ्वी से निकले पशु से समुद्र तट की रेत द्वारा अलग किया गया था 1798 में। समुद्र तट बाइबल की भविष्यवाणी का 5वां राज्य अतीत के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता था और 6ठा राज्य भविष्य के इतिहास का। मिलरवादियों ने इस सत्य को नहीं देखा। विलियम मिलर को पैगनवाद की अजगर शक्तियां और उस अगले राज्य से उसके संबंध के बारे में अंतर्दृष्टि दी गई जिसे कैथोलिक धर्म के पशु के रूप में दर्शाया गया था। प्रकाशित वाक्य 13 झूठे नबी की कथा प्रस्तुत करता है जो उन 3 शक्तियों में तीसरी है जो संसार को हर्मगिदोन तक ले जाती हैं। ये कथा 1798 के समुद्र तट पर शुरू होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना इतिहास मेमने के प्रतीक से शुरू करता है, परंतु अपने इतिहास का अंत अजगर के समान बोलते हुए करता है। पृथ्वी के पशु के शासन के प्रतीकात्मक 70 वर्षों का इतिहास प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में एक ही पद में दर्शाया गया है, क्योंकि उसी पद में एक ही वाक्य में पृथ्वी के पशु की शुरुआत और समापन दोनों बताए गए हैं।
और मैंने पृथ्वी में से ऊपर आते हुए एक और पशु को देखा और उसके 2 सींग मेमने के समान थे और वो अजगर के समान बोलता था। प्रकाशित वाक्य 13:11।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर के समान बोलता है तो वो रविवार का कानून पारित करता है। रविवार की उपासना को लागू कराने से पहले प्रोटेस्टेंटवाद की धर्मत्यागी कलीसियाएं एकजुट होकर पशु की प्रतिमा बनाते हुए धर्मत्यागी सरकार पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेंगी। जब प्रेरणा ये पहचानती है और वो ऐसा बार बार करती है कि नबूकदनेस्सर द्वारा स्वर्ण प्रतिमा का समर्पण समारोह रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो पृथ्वी के पशु के 70 प्रतीकात्मक वर्षों के अंत को चिन्हित करती है। दानियल के अध्याय 1-3 प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के 3 स्वर्ग दूतों के संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रविवार के कानून के समय तीसरा स्वर्गदूत एक जीवित सत्य बन जाता है। भविष्यवाणी की दृष्टि से दानियल की पुस्तक के अध्याय 1 से 3 प्रकाशित वाक्य 13 के पृथ्वी के पशु के 70 प्रतीकात्मक वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्याय 1 में दर्शाया गया आहार परीक्षण और यहोयाकीम की प्रतीकात्मकता ये इंगित करते हैं कि अध्याय 1 भविष्यवाणीय रूप से पहले स्वर्गदूत के सशक्तिकरण के साथ आरंभ होता है, या तो 11 अगस्त 1840 को या 11 सितंबर 2001 को, जो तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास में है। बाबेल वह राष्ट्र है जिसने 70 वर्षों तक शासन किया और वे वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। नबूकदनेस्सर द्वारा स्वर्ण मूर्ति के समर्पण के काफी बाद तक बाबेल के 70 वर्ष समाप्त नहीं हुए, लेकिन भविष्यवाणी के अर्थ में यशायाह के अध्याय 23 में प्रयुक्त 70 प्रतीकात्मक वर्ष दानियेल के अध्याय 3 में समाप्त हो जाते हैं। जब नबूकदनेस्सर का वाद्य वृंद समर्पण समारोह के लिए संगीत बजाता है, तब पशु का चिन्ह लागू कर दिया जाता है और उसी समय टायर और बाबेल की वेश्या पृथ्वी के राजाओं के लिए अपनी गीत गाने लगती है, जबकि धर्मत्यागी इसराइल झुकता और नाचता है।
राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक प्रतिमा बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसे बाबुल के प्रांत में दूरा के मैदान में खड़ी की। तब राजा नबूकदनेस्सर ने राजकुमारों, राज्यपालों, सेनापतियों, न्यायाधीशों, कोषाध्यक्षों, सलाहकारों, शहरपालों और सब प्रांतों के शासकों को ये कहकर बुलवाया कि वे उस प्रतिमा के उद्घाटन में आएं, जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ा किया था। तब राजकुमार, राज्यपाल, सेनापति, न्यायाधीश, कोषाध्यक्ष, सलाहकार, शहरपाल और सब प्रांतों के शासक उस प्रतिमा के उद्घाटन के लिए इकट्ठे हुए जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ा किया था, और वे उस प्रतिमा के सामने खड़े हुए जिसे नबूकदनेस्सर ने खड़ा किया था। तब एक हरकारे ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे लोगों, जातियों और भाषाओं, तुम्हें ये आज्ञा दी जाती है कि जिस समय तुम नरसिंघे, बांसुरी, वीणा, सैकबट, साल्ट्री, डल्सीमर और तरह तरह के सब बाजों की ध्वनि सुनो, तब तुम गिरकर उस सोने की प्रतिमा की आराधना करो जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ा किया है, और जो कोई गिरकर गृंदवट न करेगा और आराधना न करेगा, उसे उसी घड़ी जलती हुई धधकती भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। इसलिए उस समय जब सब लोगों ने नरसिंघे, बांसुरी, वीणा, सैकबट, साल्ट्री और तरह तरह के सब बाजों की ध्वनि सुनी, तब सब लोग, जातियां और भाषाएं गिरकर उस सोने की प्रतिमा की आराधना करने लगे जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ा किया था। दानियल 3:1-7।
उस समय में या उसी घड़ी में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का रविवार का कानून है, जो कोई स्वर्ण प्रतिमा की उपासना करने से इनकार करेगा, उसे धधकती आग की भट्टी के बीचों बीच फेंक दिया जाएगा। पुराने नियम में घड़ी के रूप में अनुदित शब्द जिस एकमात्र पुस्तक में मिलता है, वो दानियेल की पुस्तक है। तीसरे अध्याय में घड़ी शब्द पशु के निशान के आगमन का प्रतिनिधित्व करता है। चौथे अध्याय में घड़ी शब्द पहले स्वर्गदूत के संदेश का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वहां ये नबूकदनेस्सर को परमेश्वर के न्याय की आने वाली घड़ी की चेतावनी का प्रतीक है।
तब दानियेल, जिसका नाम बेल्तशस्सर था, एक घड़ी तक स्तब्ध रहा और उसके विचार उसे व्याकुल करते रहे। तब राजा ने कहा, बेल्तशस्सर, इस स्वप्न से या उसकी व्याख्या से तू व्याकुल न हो। बेल्तशस्सर ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर पड़े और उसकी व्याख्या तेरे शत्रुओं पर ठहरे। दानियेल 4:19।
दानियेल ने नबूकदनेस्सर को परमेश्वर के न्याय की आने वाली घड़ी की चेतावनी दी, जिसे नबूकदनेस्सर ने बाद में ठुकरा दिया। अध्याय 4 में घड़ी शब्द जब फिर से प्रयुक्त होता है, तब वो उस घड़ी का प्रतिनिधित्व करता है जब न्याय आ पहुंचा। मिलराइट इतिहास में अध्याय 4 की पहली घड़ी सत्तरात नाव में पहले स्वर्ग दूत के आगमन का प्रतिनिधित्व करती है। वो संदेश तब पूरा हुआ जब 22 अक्टूबर 1840 किलो जांच पड़ताल का न्याय आरंभ हुआ। अध्याय 4 की घड़ी पहले आने वाले न्याय के संदेश का प्रतीक है और फिर इसका प्रयोग इस रूप में होता है कि न्याय आ चुका है। घड़ी शब्द का पहला प्रयोग सत्तरात नाव में और पहले स्वर्गदूत के आगमन का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा प्रयोग 22 अक्टूबर 1840 किलो तथा तीसरे स्वर्गदूत के आगमन का।
उसी घड़ी नबुकदनेस्सर पर वो बात पूरी हुई और वो मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया और बैल की तरह घास खाने लगा और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगता रहा जब तक कि उसके बाल उकाब के पंखों के समान बढ़ गए और उसके नाखून पक्षियों के पंजों के समान हो गए। दानियल 4:33।
अतः अध्याय 4 में घड़ी एसठितरणु और एठव चौरासवार दोनों का प्रतीक है जो इसराइल के उत्तरी 784 ईसा पूर्व से आरंभ और दक्षिणी 774 ईसा पूर्व से आरंभ राज्यों के विरुद्ध सात काल के दो श्रापों के समाप्ति बिंदु है। ये दोनों श्राप भिखारो और दासत्व के 2520 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हुए परमेश्वर के अपने धर्मत्यागी लोगों के विरुद्ध उसके प्रथम और अंतिम कोप की कार्यवाही को दर्शाते हैं। दोनों ही परमेश्वर के न्याय से शुरू हुए और इनके अपने अंत परमेश्वर के आसन जांच पड़ताल के न्याय के चेतावनी संदेश या स्वयं उस जांच पड़ताल के न्याय के आगमन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सात काल के दो श्रापों की समाप्ति से जिन दोनों न्यायों का प्रतिनिधित्व होता है उन्हें दानियल अध्याय 4 में घड़ी शब्द द्वारा दर्शाया गया है। मिलराइट इतिहास में घड़ी 7989 में अंत के समय पर आंदोलन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है जब पहला स्वर्गदूत आया था और अध्याय 4 में दूसरी घड़ी आंदोलन के अंत का प्रतिनिधित्व करती है जब 22 अक्टूबर 1894 को तीसरा स्वर्गदूत आया था। पहले स्वर्गदूत का मिलराइट आंदोलन तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन में दोहराया जाता है, इसलिए अध्याय 4 में घड़ी के दोनों प्रयोग 1989 में अंत के समय को और साथ ही शीघ्र आने वाले रविवार के कानून को भी चिह्नित करते हैं। पहले स्वर्गदूत का मिलराइट आंदोलन अन्वेषण न्याय के उद्घाटन की घोषणा करता है और तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन परमेश्वर के कार्यकारी न्याय के उद्घाटन की घोषणा करता है जो क्रमिक है, जिसका आरंभ रविवार के कानून से होता है और जो मसीह के दूसरे आगमन तक जारी रहता और तीव्र पतोता जाता है। हम दानियेल के बुनासर का अपने अध्याय के अपने अध्याय को जारी रखेंगे और अगले लेख में घंटा शब्द पर अपनी चर्चा का समापन करेंगे।
देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों के समान भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान निर्दोष बनो, परंतु मनुष्यों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें परिषदों के हवाले करेंगे और तुम्हें अपने आराधनालयों में कोड़े मारेंगे और मेरे कारण तुम्हें हाकिमों और राजाओं के सामने लाया जाएगा ताकि उनके और अन्य जातियों के विरुद्ध गवाही हो। पर जब वे तुम्हें पकड़वा दें तो ये चिंता न करना कि तुम कैसे या क्या बोलोगे, क्योंकि उसी घड़ी तुम्हें दिया जाएगा कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा है जो तुम में बोलता है। और भाई भाई को मृत्यु के लिए पकड़वाएगा और पिता संतान को, और बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और उन्हें मरवा देंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज रखे रहेगा वही उद्धार पाएगा। परंतु जब वे इस नगर में तुम्हें सताएं तो दूसरे में भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम इसराइल के नगरों का परिभ्रमण पूरा न कर पाओगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने गुरु के समान हो और सेवक अपने स्वामी के समान। यदि वे घर के स्वामी को ही बेलजीबूल कह चुके हैं तो उसके घराने वालों को कितने अधिक कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि ऐसा कुछ भी ढका हुआ नहीं जो प्रकट ना होगा, और ऐसा कोई छिपा हुआ नहीं जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उसे उजाले में कहो, और जो तुम कानों में सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। और उनसे मत डरो जो शरीर को तो मारते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, बल्कि उससे डरो जो नरक में आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है। मत्ती 10:27।